તારીખ 14/5/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 913 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 562.
सभी प्रकार के आदि व्याधि उपाधि ऐसे जो दुर्भाव हैं जी उनको संसार में जिसको भोगता है नहीं चाहते हुए भी जिस दुख को भोगता है उस दुख से मुक्त कैसे हुआ जाए, क्योंकि चाहता तो नहीं है, दुख तो कोई भी होता है लेकिन मुक्त होने का उपाय नहीं मिलता है, वहां तक संसार में दुखी दुखी बना रहता है। उस दुख मिटाने का उपाय यहां बता रहे हैं। कि अगर सुखी होना है तो इस प्रकार से भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान करो माने अपना जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो तो भिन्न तो है ही, भिन्न का भिन्न रूप में अनुभव करो। भिन्न है फिर भी अभिन्न रूप से अनुभव करते हैं तो दुखी होते हैं। दुखी होने का यही कारण है और कोई कारण नहीं। अब भिन्न कैसे होना वो बात यहां इस पैराग्राफ में रूपारू देव ने अच्छी तरह दर्शाई है। कल चला था, थोड़ा फिर से ले रहे हैं कि उपयोग लक्षण थे सनातन स्थूरी, ऐसा आत्मा को देह से तेजस और कार्मण शरीर से भी भिन्न अवलोकन करने की दृष्टि साध्य करके भिन्न अवलोकन करना मैंने भिन्न अनुभव करना, भिन्न अनुभव करने का दृष्टिकोण साध्य करना चाहिए। कैसे के उपयोग लक्षण से भिन्न किया जाता है। जीव में ज्ञान का पर्याय होता है, ज्ञान शक्ति की जो अवस्था है उसको कहते हैं यह उपयोग। यह उपयोग अन्य द्रव्य भाव से अनुभव करने के लिए खास साधन है या खास लक्षण है, स्पेसिफिक सिम्पटम। जैसे कोई चीज ऐसी हो कि जिससे उसकी पहचान करने में उसके बराबर की चीज से भी वो अलग समझे जाए, जैसे हीरे होते हैं, हीरे खोटे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं, दिखाव में एक से दिखते हैं, दिखाव में एक से दिखते हैं, फिर भी आई ग्लास उसका जो आता है वो ग्लास रख कर के देखे तो उनकी जो चमक है वो तो उसका खास लक्षण है। क्या लक्षण है? दिखाव तो एक सा है, दूर से देखो तो चमक में भी कोई अंतर नहीं दिखेगा। छोटा हीरा भी चमकता है लेकिन दूर से देखे तो, आई ग्लास लगा करके देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास, छोटी चीज भी बड़ी दिखे और उसमें उन पत्थर का प्रकाश दिखता है। हीरा का जो पत्थर है उसमें कोई चमक होती है और जो हीरा का पत्थर नहीं होता है उसमें ऐसी चमक नहीं होती है। तो चमक उसका खास लक्षण है, इससे ये हीरा सच्चा है ऐसा समझ में आता है। वो बात अवश्य है कि वो चमक देखने की नजर तो चाहिए, चमक को समझ में नहीं आता है। मैंने आम आदमी को, सामान्य मनुष्य को वो बात समझ में नहीं आती है कि सच्चा हीरा कैसा होता है, छोटा हीरा कैसा होता है। परंतु जो जौहरी होते हैं उनको तो बराबर समझ में आता है। इस तरह से आत्मा को पहचानने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए। उस योग्यता को यहां कहते हैं कि भिन्न अवलोकन करने की दृष्टि को साध्य करना, उस प्रकार की तैयारी में आना। जो जीव आत्मकल्याण की भावना वाला होता है और वो भी पर्याप्त भावना वाला होता है, तीव्र भावना वाला होता है, ऐसे जीव को ये दृष्टिकोण साध्य होता है, दूसरे को नहीं होता। फिर पहले तो ऐसा वेद ज्ञान करने के लिए अपने आत्मा को भिन्न अवलोकन करने का दृष्टिकोण कौन साध्य कर सकता है कि जिसको अपना आत्मकल्याण की पर्याप्त भावना होती है वही कर सकता है। उपयोग लक्षण तो सभी को है लेकिन सबको नजर नहीं होती। ये भावना वाले को ही ये दृष्टिकोण प्राप्त होता है। वो भावना में आने वाला जी सबसे पहले तो अपना परिणामों का अवलोकन करेगा, अवलोकन की प्रैक्टिस उनको चालू हो जाएगी। तो अवलोकन करना मैंने अनुभव को देखना, अनुभव को अनुभव करके समझना, जैसे स्वाद को अनुभव करके समझा जाता है, देख करके भी नहीं और सुन करके भी नहीं। पदार्थ है उसका स्वाद शब्दों से नहीं समझा जाता और उस पदार्थ को देखने से भी नहीं समझा जाता, लेकिन चखने से अनुभव होता है तो समझा जाता है। ऐसे समझ में कुछ चीज अनुभव पूर्वक ही समझी जाती है, बिना अनुभव समझ में नहीं आती। वैसे आत्मा भी अनुभव से समझने की चीज है, सुनने से समझने की चीज नहीं है, पढ़ने से समझने की चीज नहीं है, विचार करने से समझने की चीज नहीं है, वो ख्याल में रखना है। इसलिए हमको हमारा परिणाम में क्या क्या अनुभव होता है उसको देखना है। उसमें भी ज्ञान, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ऐसा हमको श्री गुरु ने समझाया है। तो हमारा में जहां जहां ज्ञान है वहां ही हमारा आत्मा है। गलती वो रही, वो हो रही है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से अन्य ज्ञेय, जिस ज्ञेय को वो जानता है उनके साथ उस ज्ञेय से भिन्न रूप अपना अनुभव नहीं करता, वो गलती हो रही है। भेद संवेदन शक्ति कुंठित हो गई है, भिन्न अनुभव करने की संभावना, भिन्न अनुभव करने की शक्ति कुंठित हो गई है। इसलिए और ज्ञेय को जानते वक्त ज्ञेय में आसक्त होने से उसमें सुख दुख की और इष्ट अनिष्ट पुणे की कल्पना अभिप्राय पूर्वक बना रखी है, इसलिए भिन्न अनुभव करने की दृष्टि कुंठित हो गई है। और उस परिस्थिति में अपना अकल्याण हो रहा है। अब जिसको कल्याण की भावना हुई है वो अपने अकल्याण कैसे होता है उसको भी पहले देखेगा। कल्याण की भावना वाला क्या देखेगा कि अपना अकल्याण कैसे हो रहा है वो देखेगा। वो दोष है, अकल्याण दोष से होता है तो पहले दोष देखेगा। दोष होने में हमारा उल्टा अनुभव कैसे कार्य कर रहा है वो समझ में आएगा अवलोकन से, कि हमारा उल्टा कार्य कैसे हो रहा है। वो उल्टा कार्य जिस प्रकार के अनुभव से हो रहा है, अब उसमें हमारा अहित हो रहा है, अब श्रुता कैसे हो गए उस सबसे वो शिक्षा लेता है। साथ साथ श्री गुरु का उपदेश भी मिलता है, ज्ञानियों का भी उपदेश मिलता है कि देख तेरे में एक ज्ञान का उपयोग चल रहा है, उसके साथ कोई मेल नहीं खाता। सच्चे हीरे और खोटे हीरे में तो हीरा का मेल खाता है तो उसको तो परख करना कठिन है, लेकिन यहाँ उतनी कठिनाई नहीं है, उतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ तो उपयोग है, वो उपयोग और अन्य भाव, अन्य ज्ञेय वो बिल्कुल अलग पड़ता है। उपयोग के साथ दूसरे द्रव्य भाव की कोई सिमिलरिटी नहीं होती। ये मोती में तो सिमिलर रंग होते हैं, एक सरीखे होते हैं, तो उसमें तो कठिनाई हो सकती है कि सच्चा क्या होता क्या, परंतु उसमें इधर इतनी कठिनाई, इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपयोग की बराबरी में कोई ज्ञेय द्रव्य रूप या भाव रूप कोई नहीं है ही नहीं। इसलिए भिन्न करना, भिन्न अनुभव करना आसान है। दूसरी बात वो है कि जहां उपयोग है वहां ही अपना वेदन है, अनुभवन है, और उपयोग को छोड़ करके जो निरूप अन्य तत्व है वहां अपना अनुभव नहीं है। इसलिए हमारा ज्ञानानुभव हमेशा शुद्ध रहा है, मैंने ज्ञान भी शुद्ध ही रहा है, ज्ञान ज्ञेय से कभी मिक्स नहीं हुआ, एडल्ट्रेशन नहीं हुआ, मिलावट नहीं हुई। कोई किसी भी ज्ञेय के साथ ज्ञान की मिलावट नहीं हुई, इसलिए ज्ञान की शुद्धत्व शक्ति यूं की यूं बनी रही है। ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में कभी होती नहीं, हो ही नहीं सकती। ये एक हमारे पदार्थ की, हमारी वस्तु की सुंदरता है। पदार्थ बिगड़ता कब है कि कुछ फॉरेन एलिमेंट उसमें आता है तब बिगड़ता है, अन्य तत्वों का मिलावट होती है तो बात बिगड़ती है। लेकिन आत्मा के ज्ञान में, मैंने आत्मा में, क्योंकि ज्ञान है उतना ही आत्मा है, कितना आत्मा है, जितना यह ज्ञान है उतना ही आत्मा है, उतना ही सत्य आत्मा है। आता है समय सार की 206 नंबर की गाथा कि जितना यह ज्ञान है उतना ही आत्मा है, और उसमें मिलावट होती नहीं। इसलिए हमारी सुंदरता कभी बिगड़ती नहीं, हमारा शुद्धत्व वैसा का वैसा रहता है। यहां से अगर हम अवलोकन करें तो कैसे अवलोकन करें, कि ज्ञान से। किसका अवलोकन करें, कि स्वयं ज्ञान का ही अवलोकन करें। ज्ञान स्वयं अपने आप का अवलोकन करे तो अपना शुद्धत्व नजर आता है। क्यों अपना शुद्धत्व नजर आता है, तो भिन्न ही रहा है, तो भिन्नत्व से शुद्धत्व नजर आता है। भिन्नपणा मालूम पड़ता है तो अपना शुद्धत्व नजर आता है। अनंत काल हमारी आत्मा निगोद में प्रचुर कषाय कलंक के साथ रही, प्रचुर कषाय का मलिन कादव जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मलिन मिट्टी, कीचड़, कीचड़ हिंदी में बोलते हैं, कीचड़, प्रचुर कषाय के कीचड़ के बीच में हमारी आत्मा अनंत काल रही, फिर भी हमारा ज्ञान का शुद्धत्व कभी अशुद्ध हुआ। आत्मकल्याण की भावना में आकर के देखें तो वो बात दिखने में आती है, वरना वो बात दिखने में नहीं आती। मूल में जो कुछ वजनदार बात है वो आत्मकल्याण की भावना की है। खरी भावना में जीव आया तो भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान होना आसान है, वरना भेद ज्ञान बिना अभिन्न अनुभव में दुखी ही दुखी हो जाएगा। देह में असत आए बिना रहेगी नहीं, और पीड़ा का अभिन्न बिना रहेगा नहीं। अब तो देह में पीड़ा होने पर भी दुख का अनुभव नहीं होवे, वो कैसे? क्यों? ये वनमालीदास भाई को ये उदय आया था, इसलिए वो बात चली है। चलिए बता रहे हैं सब भाई, ये वनमालीदास भाई हैं, ये कृपालु देव के बहुत समीपवासी योग्य मुमुक्षु थे और बहुत समीप में रहे हुए हैं। पत्र तो और भी होंगे लेकिन प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, और ज्यादा प्रत्यक्ष समागम रहने से भी पत्र व्यवहार कम हो जाता है। दूर रहने वाले से पत्र व्यवहार ज्यादा रहता है, क्षेत्र से दूर रहने क्योंकि वो समीपवासी हैं। तो पत्र तो उनके पर लिखा है, लेकिन हमारा भी सौभाग्य है कि ये बात हमारे लिए अब भी हमारे लिए मौजूद रही है। उनको लिख रहे हैं कि उपयोग लक्षण से देखो तो देह से तेजस, से तेजस और कार्मण शरीर से तीन प्रकार के शरीर हैं। ये औदारिक शरीर है, देह है। कार्मण वर्गणा जो लगी हुई है संयोग में है उसको कार्मण शरीर कहते हैं, और एक तेजस्वी परमाणु होते हैं उसको तेजस शरीर कहते हैं। इसलिए मुर्दा में और जिंदा में अंतर दिखता है। शरीर तो शरीर है, लेकिन जो तेजस शरीर वाला होता है वो आत्मा के साथ रहता है, और आत्मा चला जाने से कार्मण और तेजस परमाणु साथ में जाते हैं और ये औदारिक परमाणु यहाँ रह जाते हैं। तो तीनों पुद्गल परमाणु से उपयोग का मेल नहीं खाता, ज्ञान भिन्न पड़ता है। अवलोकन करो ज्ञान से, ज्ञान का स्वयं का, और अवलोकन भिन्न अवलोकन करने का दृष्टिकोण अगर साध्य हुआ तो आधि व्याधि उपाधि किसी का भी दुख उत्पन्न ही होने वाला नहीं है। दुख ही उत्पन्न नहीं होगा, फिर अनुभव भोगने का क्या सवाल रहा? दुख उत्पन्न हुए तो भोगना होता है ना, दुख उत्पन्न नहीं हुए तो किसको भोगेगा? ऐसी दृष्टि साध्य करके यह चैतन्यात्मक स्वभाव आत्मा निरंतर वेदक स्वभाव वाला होने से, अपना जो चैतन्य स्वभाव है वो वेदन करने का स्वभाव वाला है, जो हमेशा अलग 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 रहता है। क्या रहता है? हमेशा अलग ही रहता है। एक ऐसा तत्व है हमारे में, अगर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता हो तो भी अस्पष्ट रूप से भी उतना तो नजर आएगा कि मैं अलग रहता हूँ, मैं कुछ अलग रहता हूँ, मैं कुछ अलग रहता हूँ, मैं कुछ अलग रहता हूँ। वो चैतन्य स्वभावी आत्मा है, और वेदन करने का उसका स्वभाव है। अनुवेदन करना मैंने अनुभव करना, अनुभव करने का स्वभाव होने से परमागमों में, समय सारादि परमागमों में आत्मा को अनुभूति स्वरूप कहा है। कैसा है आत्मा? अनुभूति स्वरूप है, अनुभव करने का उसका स्वभाव है। ऐसा होने से वो अनुभव तो करेगा ही करेगा। अवंध दशा की प्राप्ति नहीं होगी वहां तक तो साता असाता का अनुभव करेगा। कि जब तक अपने आप का भिन्न अनुभव नहीं करेगा वो अबद्ध दशा है। जब तक अपने आप का भिन्न अनुभव नहीं करेगा वहां तक वो साता साता का अनुभव किए बिना रहेगा। ऐसा निश्चय करके, ऐसा निर्धार कर लेना कि अगर मैं अपने आप का अनुभव में नहीं रहूंगा तो मुझे असाता का दुख अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। ऐसा निश्चय करके जो शुभाशुभ परिणाम धारा की परिणति द्वारा वह साता असाता का संबंध करता है उस धारा के प्रति भी उदासीन हो करके, अब क्या है कि भेद ज्ञान के प्रोसेस को और सूक्ष्मता से बताते हैं। इसमें क्रम क्या लिया है वेद ज्ञान का कि पहले स्थूल रूप से वेद ज्ञान करो, फिर गहराई में जाकर के सूक्ष्म रूप से वेद ज्ञान करो, फिर और गहराई में जाकर के अकेला शुद्धात्मा का अनुभव करो। ये क्रम से बात लिया है, व्यवस्थित बात लिया है। तो कहते हैं कि जो निश्चय किया कि अगर मैं मेरा ज्ञान का अनुभव में नहीं रहूंगा तो मुझे साता असाता भोगनी पड़ेगी, ये बात निश्चित है। अब साता असाता कहाँ से भोगने में आती है? कि जो शुभाशुभ परिणाम है उसके द्वारा भोगने में आती है। देखो यहाँ विशेष बात क्या कही, ज्ञान द्वारा साता असाता भोगने में नहीं आती है, शुभाशुभ परिणाम धारा द्वारा साता असाता भोगने में आती है, ऐसा काम दिखा है। क्यों? तो ज्ञान तो साता असाता को जानने वाला है, वेदन करने वाला नहीं है। तो जो परिणाम की धारा दशाए की तीव्रता और मंदता रूप है, शुभाशुभ मैंने क्या कि कषाय की तीव्रता अशुभ है और कषाय की मंदता शुभ भाव है। जिस कषाय परिणति द्वारा साता असाता का संबंध होता है, अनुभव नहीं होता है। देखो क्या लिखा है, क्योंकि अनुभव करने का तो ज्ञान में ज्ञान का ही रहता है। बहुत विचक्षणता से ये विषय का प्रतिपादन चल रहा है, बहुत विचक्षणता से चल रहा है। भीतर में कृपालु देव अपने अनुभव को खुला करके दिखा रहे हैं। फिर से अनुभव है कि ज्ञानी पुरुष के अंतरंग की चीज है, अपने हृदय की चीज है। उनको खुले कर देते हैं अभी, यही इनकी कृपा दृष्टि है कि अपने हृदय की चीज को खुली, हृदय को खुला कर रहे हैं। जो चीज सभी ज्ञानियों के हृदय में रही है वही चीज यहां खुली करके चौराहे पे रख दी है, चौक में रखे थे, चार रास्ता ना चौक, ये हमारा हृदय है कि जो शुभ शुभ परिणाम को छोड़ देना, अपेक्षा और उपेक्षा ये दोनों भाव प्रतिपक्ष में है, विरुद्ध है, प्रतिपक्ष माने विरोधी भाव है। उपेक्षा का दूसरा नाम उदासीनता है और वो अपेक्षा से विरुद्ध है। शुभाशुभ परिणाम द्वारा साता असाता का संबंध कब होता है, तब नास्ते में से अस्थि निकालते हैं कि अपेक्षा वृत्ति रहती है तब तक। ये कषाय की तीव्रता मंदता की अपेक्षा रही तब तक साता असाता का अनुभव संबंध हो जाएगा, अभिन्नपणा हो जाएगा और अध्यासित भाव से अनुभव दुख का होगा। अब उसकी उपेक्षा कर लो, जो भी शुभाशुभ परिणाम है उनकी उपेक्षा करो। धर्म के क्षेत्र में आने वाले भूल कहाँ करते हैं कि अशुभ की उपेक्षा कर सकता है, शुभ की उपेक्षा नहीं कर सकता। ज्ञानियों ने तीसरा रास्ता निकाला है कि अशुभ की उपेक्षा और शुभ की अपेक्षा तो अनेक भवों में धर्म के क्षेत्र में तुमने बहुत किया, अब एक बात और तुमको दिखाते हैं कि तुम शुभ और अशुभ दोनों की उपेक्षा करो, किसी भी एक की भी अपेक्षा नहीं करो। आत्मसिद्धि में भी वो बात लिख दिया है आगे कि तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। मोक्ष स्वभाव कब उत्पन्न होता है? मोक्ष स्वभाव मैंने अबंध दशा, वो कब होती है कि शुभ और अशुभ का छेद करे। यहाँ भेद ज्ञान का स्टेज की बात चल रही है तो प्रोसेस में अच्छी तरह दिखाने के लिए उदासीन होने की बात किया है। आत्मसिद्धि में वही उदासीनता के दूसरे शब्द में बोला है कि उसका छेद कर दो, क्या करो, उसका छेद कर दो, उसका नाश कर दो ना। अभी तो मुमुक्षु की भूमिका में चल रहा है तो उदासीन हो जाओ, और ज्ञान दशा में तो उसका नाश करके मुक्त भाव को, मोक्ष मार्ग को उत्पन्न करो। जिस शुभाशुभ परिणाम धारा की परिणति द्वारा वह साता असाता का संबंध करता है जी, उस धारा के प्रति उदासीन हो करके, उस धारा के प्रति उदासीन हो जा, उसकी उपेक्षा कर दो, उसको गौण कर दो, कहीं भी इसकी अपेक्षा मत रखो। आप कहेंगे कि कैसे अपेक्षा रखते हैं वो तो बताइए, कि ऐसा विकल्प हुआ तो मेरा पुरुषार्थ हुआ, ऐसा विकल्प हुआ तो मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा विकल्प हुआ तो मेरी श्रद्धा दृढ़ हुई। ये सब शुभ की अपेक्षा है, तो अपेक्षा को छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता, उससे उदास हो जाओ। उससे उदासीन होकर के देहादि से भिन्न और स्वरूप मर्यादा में रहा हुआ या आत्मा में जो चल स्वभाव रूप परिणाम धारा है, उसका आत्यंतिक वियोग करने का सन्मार्ग ग्रहण करके और सूक्ष्मता में ले जाते हैं कृपानुदेव, कि आगे अभी बढ़ना है। सुबह शुभ से उपेक्षा कर दिया, अब एक और बात करते हैं कि जो आत्मा देहादि से भिन्न है और अपने स्वरूप की मर्यादा में रहा हुआ है, स्वरूप छोड़ करके कभी स्वरूप का उल्लंघन करके बाहर जाता नहीं है, ऐसे आत्मा में एक चल स्वभाव रूप परिणाम धारा है। उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे हो ही रहा है। अनादि से जीव की पर्याय दृष्टि होने से जितना उत्पाद वे रूप परिणाम है, उतना ही अपने को मानता है, जानता है और अनुभव करता है। वो पर्याय दृष्टि रूप मिथ्या दृष्टि है। वास्तव में हम अचल स्वभाव रूप, ध्रुव स्वभाव रूप नायक तत्व ऐसा आत्मा है। तो अब चल स्वभाव रूप परिणाम धारा है, उसका क्या करना है? कि उसका अत्यंत वियोग कर देना, कोई एक सन्मार्ग है, उसका वियोग करना वही एक सन्मार्ग है, उस सन्मार्ग को ग्रहण करना, वो क्या बात है? कि जो सम्यक दृष्टि है वो द्रव्य दृष्टि है, पर द्रव्य दृष्टि द्रव्य के सिवा किसी को देखती दृष्टि खुद परिणाम है, दृष्टि खुद परिणाम है, और वो अपने आप को भी नहीं देखती, तो दूसरे परिणाम को तो देखेगी कैसे? देखती भी नहीं, और दृष्टि का स्वीकार करने का, अपने रूप में स्वीकार करने का परिणाम स्वभाव है। तो वो अचल स्वरूप को, अचल स्वभाव को, निश्चल आत्मा को, ध्रुव आत्मा को, अपरिणामी आत्मा को ही अपने स्वरूप में वो स्वीकार करती है। परिणाम अंश आत्मा का एक अंग होने पर भी उसका स्वीकार दृष्टि कभी नहीं करती। तीन काल में चतुर्थ गुण स्थान मार्ग में भी और सिद्धाली में भी, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सिद्धालय तक द्रव दृष्टि सम्यक दृष्टि परिणाम का स्वीकार नहीं करते। उसको कहते हैं कि परिणाम का आत्यंतिक वियोग दृष्टि में। परिणाम परिणाम के स्थान में से तो कहा जाएगा, वो तो वस्तु का अंग है। वो आगम विविक्षा से वस्तु का अंग है, अध्यात्म में वो वस्तु का अंग नहीं है। प्रकरण अध्यात्म का चल रहा है, आगम का नहीं चल रहा है। मैं ध्रुव द्रव हूं, वो अपने रूप को, त्रिकाली को स्वीकार करती है, अपने रूप में खुद को स्वीकार करती नहीं है। देखिए, अत्यंत प्रेम होता है वो अंधा हो जाता है। क्या होता है? अंधा होता है। दृष्टि का स्वभाव अपने प्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम करने का है, तो अपने स्वयं को भी भूल जाती है, अपना भान उसको नहीं रहता है। अपना भान रहता तो अपनी सावधानी करेगी, लेकिन वो स्वयं की सावधानी नहीं करती है, सिर्फ अपने द्रव्य स्वभाव, परमात्मा स्वभाव, निज परमात्मा है उसमें वो सावधान है, और उतने प्रकार से तीव्र रूप से वो सावधान है कि खुद का स्वयं का भान भूल जाती है कि मैं एक पर्याय हूँ। मैं एक पर्याय हूँ ऐसा भान वो भूल जाती है, वो प्रश्नमय हो जाती है, ऐसे ऐसे द्रव्यमय बना होता है। उस तरह से पर्याय परिणाम धारा का अत्यंत वियोग दृष्टि में होता है। कहाँ होता है? सम्यक दर्शन में परिणाम धारा का आत्यंतिक वियोग होता है, और वही सन्मार्ग है, वही सन्मार्ग है, और सब उन्मार्ग है। जब यही सन्मार्ग है तो और सब उन्मार्ग है, क्योंकि परमार्थ का पंथ तो एक ही होता है, दो होता ही नहीं कभी, एक हो तीन काल में परमार्थ का, आत्मकल्याण का तो एक ही विधि से कार्य होता है। तो कहते हैं कि चल स्वभाव रूप परिणाम धारा है, दृष्टि में से उनका आत्यंतिक वियोग करने का सन्मार्ग ग्रहण करके दृष्टि प्रकाश का विषय है ये। एक पैराग्राफ में कितनी कितनी बात ले लिया है, ये जैन दर्शन की टॉप लेवल की टॉप सीक्रेट है, इससे आगे कोई अध्यात्म का कोई विषय नहीं है। वो बात कृपाल देव ने एक पंक्ति में कर दी है कि यही सन्मार्ग है, उसको ग्रहण कर लेना। तो वो ग्रहण होकर के क्या होगा, फिर रिजल्टेड पोजीशन क्या आएगी कि परम शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप प्रकाशमय आत्मा कर्मयोग से सकलंक परिणाम दर्शाता है, इससे भी उपराम होकर के, उपराम मैंने विराम को प्राप्त करके, फिर जो कर्म के उदय के साथ योग उपयोग होता है, जुड़ान होता है, योग मैंने जुड़ान कनेक्शन होता है, परिणाम का खिंचाव होकर के जो जुड़ान होता है उसको कर्म योग कहने में आता है। वो कर्म योग से क्या होता है कि आत्मा के परिणाम में कलंक उत्पन्न होता है, वो कलंक प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव प्रकाशमय है, शुद्ध चैतन्य प्रकाश वही आत्मा का स्वरूप है, जो कर्मों के योग से सकलंक परिणाम को दर्शाता है, उससे शांत हो जाओ, उपराम हो जाओ, विराम को प्राप्त करके जैसे उपशमित हुआ जाए, जैसे शांत हुआ जाए, भीतर में अंतर्मुख होकर के उपशांत हुआ जाए, वही उपयोग और वही स्वरूप में स्थिर हुआ जाए, वही उपयोग और वही उपयोग से स्वरूप में स्थिर हुआ जाए, अचल हुआ जाए, वही लक्ष्य, वही भावना, वही चिंतमना, वो डिस्कनेक्टिंग क्रम लिया है, वही लक्ष्य, लक्ष्य नहीं हो तो वही भावना, भावना नहीं हो तो वही चिंतमना, और वही सहज परिणाम रूप स्वभाव करने योग्य है, यही कर्तव्य है। महात्माओं की बार बार यही शिक्षा है। सभी ज्ञानियों ने ऊपर जो बात कही वही उपदेश दिया है, वही परमार्थ का आत्मकल्याण करने का एकमात्र उपदेश बार बार दिया गया है। मुमुक्षु को यह ग्रहण करने योग्य है। इस तरह से इस पैराग्राफ में भेदज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय और अध्यात्म का सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय यहाँ पर चला है, और वो परिणाम प्रयोगात्मक करे, ये तो थियरी हुई, उसको प्रयोग में ले लें, परिणमन में लागू करे, तो अवश्य ऐसा अनुभव हो सकता है और हमेश के लिए आत्मा का संसार से निस्तार हो जाएगा। इतना काम होने से आत्मा का निस्तार हो जाएगा संसार से।